सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुन कर ज्ञानी भी जिसको सुन कर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
और मनोहर दादी को देखते ही चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो एक बार की बात याद आ रही है मुझे कि यहाँ पर अपने अहमदाबाद के एक कवि कहें या वो भाई आए थे, वो कहते थे कि मनोहर दादी जब जब पांडव भवन के आंगन में चलती हुई दिखाई देती हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा ही मधुबन सारी ही इंस्टीट्यूशन चल रही है। और वो दृश्य तो आप सभी हम जब देखते हैं मनोहर दादी क्लास कराने आती हैं, वो दृश्य हम देखते भी हैं। क्लास में इतना मजा आता है जब दादी क्लास कराती हैं। तो आज बहुत समय के बाद मनोहर दादी जी हम सबके बीच पहुंची हैं और हम सभी जोर से करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करेंगे। एक बार और जोर से तो हमें हम हमेशा यही चाहेंगे कि मनोहर दादी ये तो बहुत समय के बाद आ जाई हैं, हर हफ्ते अवश्य ही आए तो फिर देखो कितना अच्छा लगेगा। तो ये सब मधुबन निवासी भाई बहनों की रिक्वेस्ट भी है, हर हफ्ते आपको एक दिन अवश्य ही सब मधुबन निवासी भाई बहनों से मिलना है। जैसे आप शांतिवन में जाते हैं और ज्ञान सरोवर में तो आप ना रहते ही है, लेकिन यहाँ पर मधुबन में भी आते रहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम सुनेंगे आदरणीय दादी जी से।
ओम शांति। बरोबर मैं फील करती हूँ कि मैं बहुत ही लेट से आपके बीच में आई हूँ। क्या क्या कारण हुआ वो मुझे भी याद नहीं आता है। कुछ एक दो बार हॉस्पिटल में जाना हुआ, कुछ तबीयत नीचे ऊपर थी उसके कारण भी लेट हुआ, कभी ख्याल नहीं आया। तो जब मेरे को दो चार भाइयों ने उलहना दिया मीठा मीठा, तो मैं कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, हम आएंगे। तो उन्होंने इशारा दिया कि आपको जरूर आना है। तो मैंने भी टाइम रखा, मैं कहा फिर क्रिसमस डे मनाने आप सब हमारे पास आएंगे, फिर बाप की सीजन चलेंगी तो हम नीचे जाएंगे, इसलिए जो काम करना है वो आज करना है। तो आज मैं आप सबके बीच में आई हूँ। अभी आपको जो कुछ मेरे से पूछना हो, ये सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं और ज्ञान इतना ले रहे हैं जो बात मत पूछो। हर रोज मैं सुनती हूँ, आज दादी ने क्लास कराया, आज दादी कुमार का ने कल जोरदार क्लास कराया, मैं वहां बैठ के सुन रही थी। तो दादियों का क्लास तो ये सुनते ही रहते हैं, डूबे हुए है सारे। तो बाकी मैं क्या करूंगी, मेरे लिए क्या रखा ही नहीं, दादियों ने तो धूमधाम से सब क्लासेस करा दिए हैं। तो हम आपस में भाई बहन हैं, ज्ञान की चिट चैट कर सकते हैं। तो मैं आज आप सब, क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ बहुत नए नए भाई हैं जिनको मैंने सचमुच सूरत से भी नहीं देखा है, क्योंकि सभी रहते हैं नीचे भंडारे में अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने डिपार्टमेंट में। अब मैं कभी आती हूँ, परंतु आई दादी के ऑफिस में, गई दादी से मिलकर के फिर वहां से ही निकल करके चली जाती हूँ, इसलिए मुझे इन सब का दर्शन नहीं होता है। तो मैं आज टोली भी मैं अपने हाथ से दूंगी ताकि मुझे पता लगे कौन कहाँ से, नाम और स्थान एक शब्द में बोलते जाएंगे। हाँ डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट थोड़ा लंबा भी ना हो जाए, ऐसे तुम शशि ऐसे ही पूछेंगे ना कौन किस डिपार्टमेंट से, हाथ उठाएंगे तभी भी ठीक रहता है। मतलब मेरे लिए बहुत से नए नए भाई बहन हैं, तो मैं ये चाहती हूँ ये हमारा सबसे पुराना स्थान है, तो ये हमारे को अच्छा नहीं लगता है कि हम यहाँ के रहने वाले और यहाँ के भाइयों को न जाने। तो कभी कभी दादी कहती है मुझे भी नाम याद नहीं आता, फिर मेरे को भी थोड़ी संतुष्टि आती है, दादी को ही नाम याद नहीं आता, दादी रहती है वहाँ और मैं भी याद करूंगी तो कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं भी रहेगा। अभी इतना समय हुआ है ज्ञान सर में रहते तो मुझे उन सब का नाम थोड़ी याद होता है, सूरत याद है कि ये सूरत मेरे नसीब कई बार आई गई है। वो भी दो चार बारी बैठे हैं, उनसे लेन देन की है, उनका अनुभव सुना है, उनकी कोई डिपार्टमेंट में डिफिकल्टी होती है आती है तो पता लगता है। तो आपके डिपार्टमेंट में कब मेरे को ऐसा मौका मिलेगा? पर ये सुनी सुनाई बातें तो बहुत होशियार है, उधर से सुना उधर से सुना। अच्छा जो नए नए है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए नए नए जिन्होंने मामा बाबा के बारे में नहीं सुना है। देखो बाबा को इन नैनों से देखा, ये एक सौभाग्य था जो लौकिक जिंदगी में भी अपनी बाबा को भी लौकिक जीवन में देखा। घर पास में होने के कारण हम बाबा के घर में कई बार आया जाया करते थे। जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम बाबा के घर में हुआ, कन्याओं को खिलाने का होता है, कोई सत्संग हुआ, कोई गुरु महाराज आ गया और कुछ, और शादी का मौका, बाबा ने जब अपनी पुट्टू बेटी की शादी कराई एक योगी राज के साथ कराई थी, तो वो जो योगी राज था वो मेरे स्कूल में हेड मास्टर था, पर शिक्र से और व्यवहार से एक योगी लगता था। जब वो बैठता था तो एकदम जैसे मूर्ति बैठी है संगमरमर की, शिक्र में भी अच्छा था। तो बाबा ने अपनी बच्ची की शादी उनसे कराई क्योंकि बाबा की धर्म की शाला थी, परंतु शिव बाबा की परविष्ठा नहीं थी। और यानी बाबा की ख्यालात ऊंचे होने के कारण उस लड़के ने खुद बाबा को इशारे में बताया कि मैंने ये जन्म पत्र में देखा है कि मेरा आपके इस बच्ची के साथ संबंध होने वाला है, ऐसे इशारे में उसको बोल दिया। तो बाबा ने सोचा कि ये कैसे, ये हेडमास्टर मेरे घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है, इसके ध्यान में ये बात कैसे, ये तो छोटी है मेरी बच्ची 14 साल की और वो तो बड़ा था। परंतु जब उसने कहा ना तो बाबा के भक्ति मार्ग में भी कुछ ऐसे संस्कार थे, दृढ़ता के संस्कार और भावना, बहुत गुरुओं में भी भावना, और किसी को नाराज नहीं करना कि कोई श्राप न लग जाए, ऐसे जैसे किसी का भाव होता है ना। तो बाबा ने सामने से उसने कहा और फिर बाबा ने 2-4 दिन के बाद उन्होंने पूछा तो आपने क्या सोचा है, तो बाबा ने कहा जैसे आपने कहा ठीक है। फिर जसोता भी नाराज हो गई, बिरजना दादी भी नाराज हो गई, लाइफ में पहली बार समझो नाराज हुई है बाबा के ऊपर कि ये क्या हमारी छोटी सी बच्ची है 14 साल की और ये इतना बड़ा बुजुर्ग हो गए हैं और इसके साथ बाबा आपने हाँ कैसे कर दी। तो बाबा ने कहा कि बस उसी समय मेरा ऐसा था कि कहीं वो श्राप न दे देवे, कहीं कुछ ऐसा कर न देवे, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अभी जो मैंने हाँ की है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो घर में बाबा तो बड़ा था और बाबा सब बातों में इतना अच्छा था कि घर वाले कोई भी बाबा की एक्टिविटी में कभी भी नाराज नहीं होते थे। बाबा ने सदा सारे घर को नाराज नहीं पर राजी रखा था, हर बात में राजी रखा था। खुद जसोता भी बाबा से राजी, दोनों बहुआ बाबा से राजी, बेटे सब सब। तो जब शादी हुई ना तो वो शादी मैंने अपनी सारे शहर में हलचल मच गई कि योगी राज के साथ लेखराज की बच्ची की शादी है। तो हम भी पड़ोस के नाते से गए तो जिस समय वो बैठे थे ना सचमुच ऐसे लग रहा था जैसे लक्ष्मी नारायण बैठे, क्योंकि वो भी सुंदर थी, वो भी सुंदर था, आयु का थोड़ी पता लगता था पर एक पर्सनलिटी अच्छी थी, योगी था ना, नियम संयम की बहुत पालना करता था। पर शादी के बाद कुछ दिनों के बाद वो आती रही बाबा के पास, हम भी उनके पास जाते रहे क्योंकि 2 कनेक्शन हो गया, मेरे भाई का भी गुरु ठहरा, उसके नाते से भी मैं जाती थी और सामने पड़ोस है उसके घर में बच्ची की शादी तो भी हम उसके घर में जाते थे। तो बाबा के विचार बहुत ही अच्छे थे, एक तो पवित्रता की धारणा, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये बाबा का पक्का सिद्धांत था, और दूसरा फिर गुरुओं में श्रद्धा, गुरु की बात को कभी बाबा टालता नहीं था, कहते गुरु की बात को टालना यानी भगवान की बात को टालना या गुरु की बात एक ही बात है, तो गुरु की बात को बाबा कभी टालता नहीं था। और भावना ऐसी कि जो कुछ हमको मिला हुआ है वो भगवान की देन है और भगवान के कार्य में लगाना है, तो बाबा बड़ी दिल से उनकी सेवा करता था, खातरी करता था, खूब खातरी करता था। तो सारे शहर में बाबा के दानी संस्कार वो मशहूर थे, और गरीबों को दान करना, समाज की सेवा करना, जैसे भक्ति मार्ग में भी अच्छे अच्छे लोग उतने अच्छा काम करते हैं, मंदिर बनाना, मंदिरों में रुचि, पढ़ाई में बच्चे पढ़ते हैं उनके कॉलेज को बढ़ाना या उसमें अपना भाग लेना, इन बातों में बाबा की रुचि थी। अचानक जब बाबा में चेंज आई तो कुछ समय के बाद हमको पता लगा कि दादा लेखराज में बहुत नई चेंज आ गई है, वो बदल गया है, भगवान उसमें आता है। भगवान कैसे आता होगा? तो हम थे तो सर 11-12 साल के एज में होंगे या उससे भी कम हो सकता है। तो जब पहली बार हम बाबा के पास गए तो बाबा कश्मीर से लौटा था, ज्ञान की प्रवेशता हो गई थी, गीता ज्ञान वहां से कश्मीर से पत्र आते थे ना, उस पत्र में जहर भरा हुआ था। बाबा जब बच्चों को पत्र लिखते थे जो सत्संग में आने वाले होते थे, नस्तिक वाले आते जाते सुनते ना बाबा के ये विचार है, बस पत्रों के पीछे हमारी बहने पागल थी, पत्र ले लेकर के अपना बड़ा बड़ा वो बुक बना करके उसके ऊपर दर्ज करती रहती थी। नहीं, ये पता नहीं क्या लिखती रहती है। तो मैंने एक को कहा, मुझे कहा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम तो अपने पास रखेंगे, ये तो बाबा के कश्मीर से पत्र आते हैं। मैंने जो शुरुआत में देखा तो पहले तो बाबा का अपना ही जीवन का प्रभाव अच्छा था, फिर जब गुप्त में प्रवेशता हुई तो बाबा को भी थोड़ी ये मालूम था, कृष्ण को मानने वाला, कृष्ण का भक्त और शिव बाबा आ रहा है, शिव बाबा का पता ही नहीं, रूप को देखेगा तो कैसे मानेगा कि ये निराकार भगवान है। तो बाबा जब कश्मीर में था तो बाबा को खूब ऐसी टचिंग जोर से आती थी, जो पत्र लिखता था तो ऐसा लंबा लंबा पत्र लिख करके हैदराबाद सिंध में भेज देता था। तो हैदराबाद सिंध में तब तक माताओं कन्याओं का थोड़ा सा छोटा सा ग्रुप तैयार हो चुका था। तो बाबा के पत्रों के पिछाड़े सब पागल थे। फिर जब बाबा कश्मीर से पहली बार आए और पहली बार सभा के बीच में आ गए, खड़े हो गए, भाषण करके और खड़ा हो, तो जब तक भाषण किया तब तक भी हमने नहीं समझा कौन है क्या है, जैसे दादा लेख राज है भाई वो सत्संग करता है। जब बाबा ने सत्संग पूरा किया फिर बाबा का उठ करके खड़ा होना और ऐसी एक सेकंड दृष्टि दी, बस वो माताएं इतनी, कोई इधर से कोई इधर से कोई उधर से, अच्छे अच्छे रॉयल घर की माताएं, वो सब बाबा के नजदीक आ करके कुछ कुछ बोलने लगी और कोई कोई बाबा को पकड़ने लगे, और ऐसे जैसे बाबा को कृष्ण देख रही है, फिर मुस्कुरा रही है, फिर पकड़ रही है, फिर रास कर रही है, फिर ये कर। तो हम सभी ये सभा में देख रहे थे ये सब क्या हो रहा है, और बाबा छुड़ाने की कोशिश करता है। एक बार मैंने देखा बाबा छुड़ा के अपने आप को और सीधा ऊपर में चला गया, बाबा का कमरा ऊपर में था, तो जब ऊपर में चला गया तो जिस गोपकार ने बाबा को कृष्ण के रूप में देखा उनकी आंखें तो बंद थी, परंतु बाबा के पीछे पीछे आंखें बंद है उसको पता है तो वो कहां कृष्ण जा रहा। हम कह ये माई गिर जाएगी आंखें बंद है कैसे जा रही है इधर, तो वहां जाकर के बाबा को पकड़ा। फिर हमारे से 2-4 बहने भी गई, वो उन्होंने जाके बाबा को फिर चुराया, फिर चुरा के फिर बाबा को छिपा, जहाँ वो बाबा को छिपाते थे वहां समझते थे कृष्ण को इन्होंने छिपाया, वो कृष्ण देखती थी, इसके कारण को पता लगता था किस कमरे में छिप गया। तो ये लीला रोज ही होती थी, तो ये वायुमंडल बहुत अच्छी तरह से फैल गया, चारों ओर फैल गया। तो भाई दादा ऐसी दृष्टि देता है जो कृष्ण का हस्ताक्षेप का उनको होता है। फिर सभा के बीच में भी ऐसे हुआ कई बार, तो सभा ऐसी लगती थी आधा घंटा किसी ने बोला या बाबा ने बोला उसके बाद ये देवदृष्टि का जादू चालू हो जाता था। तो एक बार की बात बताती हूँ, जो मुझे स्मृति आती है वो मैं अभी याद करके तो नहीं आई थी, आप सबको मालूम है ना हमारी चंद्रमणि दादी जिसने अभी शरीर छोड़ा है, 3-4 साल हुआ है। तो उसका सारा परिवार हैदराबाद सिंध में नामी ग्रामी परिवार था, बहुत पैसे वाला सेठ था। तो उसके परिवार में एक ही दुख हुआ कि उसका 7 बहनों में एक सिकिले दाबाई था, उनकी शादी की तैयारी हो चुकी थी, उनके माँ ने पता नहीं क्या क्या लगाया, उनके जूते में भी हीरे मोती डाल दिए, इतनी वो अंधी थी, तो बस मेरा बेटा शादी करेगा। इतनी लगन वाली माता, और अचानक वो स्टीमर से आ रहा था तो कैसे वो गिर गया या क्या हुआ तो मतलब वो मर गया। बस उसने तो इतना शाक पैदा कर दिया माँ के हृदय पर, जो वो माता रोती ही रही, नींद नहीं करती थी, सारा दिन रोती चिल्लाती रहती थी, तो मेरे को मेरा बच्चा दो, बस मेरे को मेरा बच्चा दो। तो इन बहनों ने बाबा से थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना था, तो आत्म ज्ञान से उनमें शांति आ गई। चंद्रमय दादी, चंद्रमय की बड़ी बहन थी, उससे बड़ी बहन, तीन बहनों में बहुत ही अच्छा शांति का असर हुआ। तो उन्होंने घर में जाकर के देखा तो माँ को ज्ञान सुना नहीं सकते। वो कहती है, खबरदार मेरे से हटो, मेरे को कोई भी ज्ञान न सुनाए, मेरे पास मेरा बच्चा लेके आओ, नहीं तो नहीं आओ। तो उन्होंने आके बाबा को ऐसे बताया। तो बाबा का तो मित्र था रतन चंद दादा, चंदमणि का फादर। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है, बाबा चल सकता है। तो बाबा को बहने लेके गई अपने घर में। तो उस घर में जैसे गई ना तो वो बहुत दुखी थी। तो जैसे पहले बाबा को देखा ना तो बिल्कुल ऐसे कपड़ों में थी, जैसे नहीं कपड़ा ऐसे लाल लाल पहनते हैं, काले लाल, लाल पहनते थे काले नहीं, तो वो न कपड़ा पहन करके बैठी थी बिल्कुल अफसोस में दुखी। तो बाबा ने सामने से दृष्टि दी, कहा बच्ची तुम पहचानते हो तेरे पास कौन आया है? तो गुप्त प्रवेशता थी। जब उसने ऐसे करके देखा ना तो किसी को भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था उसने, अभी के दिनों में दुखी जब थी। पर बाबा को बहुत मीठा मुस्कुराया। तो जैसे बाबा ने दृष्टि दी, इससे पहले कहा बच्ची बाबा जो कहेंगा तुम मानेगी? तो ऐसे कहा, अच्छा पहले जाओ रूम में कपड़ा चेंज करके आओ। बच्ची ये दुख की निशानी है, बाबा के सामने तुम बच्ची दुख का कपड़ा पहन के बैठो, बाबा को पसंद नहीं आता है, तुम जाओ कपड़ा बदली करके आओ। वो कपड़ा बदली करके फिर आके बैठी। फिर बाबा ने दृष्टि दी तो कहा बस बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी आस है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छा अगर कृष्ण जैसा बच्चा तुमको मिल जाए तो कहती फिर और क्या चाहिए? पर बोला उस भाव में, मतलब बच्चा चाहिए। फिर बाबा की दृष्टि से ना वो साक्षात्कार में चली गई, और साक्षात्कार में इतनी जोर से चली गई कि कृष्ण उसको गोद में दिखाई पड़ा। कृष्ण को ऐसे कर रही है, प्यार कर रही है, गले लगा रही है, चुमन कर रही है, सब कुछ। पर थी धीरे दृष्टि में जोरदार नशा चल गया। उसके बाद ये जब उठी तो उन्हें होश में नहीं था, तो ढूंढती थी मेरा बच्चा कहाँ गया, फिर मेरा बच्चा कहाँ गया, फिर ऐसे जैसे पागल थोड़ा हो जाता ना ऐसे। फिर बाबा ने कहा बच्ची इसको रोज तुम सत्संग में ले आओ, रोज सत्संग में कपड़ा बदली करके आ गई। तो वो रोज सत्संग में जाती थी, रोज सत्संग में नित्य नया कृष्ण का ही अनुभव करती थी। तो उसकी आस बाबा ने उस रूप से पूरी कर दी, जो बच्चे की आस थी अग्नि लगी हुई थी जैसे, वो बाबा ने पूरी कर दी। कराने वाला शिव बाबा, बाबा को स्थापना में ऐसी आत्माओं का पाठ होगा। तो बस वो जिस दिन से वो उठी ना उसी दिन से घर में रोना धोना पीटना सब बंद हो गया, और घर एक सत्संग का रूप बनने लगा। सभी लड़कियां ज्ञान में आ गए, बाकी रहा एक फादर। तो उन्होंने तो कहा अब हम अपनी लाइफ को यही बनाएंगे। जिन्होंने शादी नहीं की थी उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे। चंद्रमा ने शादी नहीं की थी, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। और जिन्होंने की थी वो पहले ही किसी न किसी कारण से दुखी थी। एक बहन ने शादी की, उसके पति ने शरीर छोड़ा। दूसरी बहन ने शादी की 6 मास के बाद, फिर जब पुष्पा दादी थी 6 मास के बाद उसने पति ने शरीर छोड़ा, तो उसको भी गहरा दुख था। तो वो भी जब बाबा के सामने गए ना तो बाबा उनसे भी पूछता था बच्ची ये संसार तुम्हें कैसा लगता है? तो कहती है बाबा ये संसार बहुत दुख में है। बाबा ने कहा अच्छा तो सुख में संसार में जाना चाहती हो? हाँ बाबा। बाबा आप मुझे जहाँ ले चलेगा पर ये संसार दुख में। फिर बाबा उसको दृष्टि देता है और आत्मा का निजी ज्ञान जब देता है कि किसका पति मरा, बच्ची किसका पति मरा? तो वो कहती मेरा। तुम कौन हो? तो फिर ये तो बुक से नहीं बोल सकते ना मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने समझो ये पहली हल कहा है, ये शरीर तो नाशवान है 5 वर्षों का, इस शरीर में तुम कौन विराजमान हो? बच्ची तुम अपने आप को जानती हो, पहचानती? फिर बाबा दृष्टि देता है। तो हमारा ज्ञान सिर्फ ज्ञान मुख से नहीं था पर रूप में था, दृष्टि में था। बाबा ने रियलाइज करा तुम आत्मा हो और ये शरीर का पति मरा, पर तुम आत्मा हो ना, तेरा पति कौन है? तुम जानती हो? तो कहते नहीं। फिर बाबा ने दृष्टि जी ने तो उसका अंदर की जो गमगीन थी ना उसका दिल की कली खिल गई, बहुत मुस्काने लगी, बहुत जैसे उसको बहुत बड़ा अतिन्द्र सुख मिल गया। तो इसकी लाइफ में परिवर्तन आया है। जब चंद्रमय दादी ने भी कहा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं कृष्ण की बनूंगी, और बाकी जो दूसरी थी तो उनका कोई ना कोई कारण बन चुका था, तो वो भी वापस बाबा के ज्ञान में जल्दी से चली आई। इधर उधर से सब कोई कहां थी कोई कहां थी, सब बाबा के ज्ञान में चल पड़ी। इस परिवार का सबसे पहले फाउंडेशन रतनचंद। फिर रतनचंद क्या था, तो ये जब समर्पण होने पर आई कराची में, ये सारा परिवार गया, तो उन्होंने जाके फादर को बताया कि बाबा बस हमारी तो यही लाइफ है, हमको शादीवादी तो नहीं करनी है, तो हम बाबा के बन का की ये सेवा करेंगे। तो बाबा कराची में गए हैं तो मेरे को भी कराची में जाना है। तो ये कराची में गई थी, परंतु बाबा ने कहा बच्ची तुम समर्पण कैसे हो सकती हो, तुम्हारा फादर तो ज्ञान में चलता नहीं है, और मकान सारा मकान हैदराबाद सिंध में, तो जब तक तुमने मकान का फैसला नहीं किया है तो तुम सारी बच्चियां और तुम्हारी माँ वो सरेंडर कैसे हो सकेंगे, तो सरेंडर होने के लिए तुम्हारी संपत्ति भी उसमें चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो गई मकान को बेचने के लिए। बड़ी बच्ची यही थी समझो, समझदार ज्ञानी सुआत्मा, तो बड़ी बच्ची यही थी। तो उसने कहा मैं हैदराबाद में जा करके ना मैं अपने मकान को बेचूंगी। मकान कोई छोटा मोटा तो नहीं था, बड़ा भारी अच्छा था, 50-50 भाई थे इकट्ठे लाइन लाइन में, तो जैसे कोई आता था ग्राहक वैसे वो उनको अंदर ही बिगाड़ देते थे कि आप इनका मकान नहीं लेना, आप इनका मकान नहीं लेना, हम सब इतने भाई हैं, हम सब विघ्न डालेंगे। बेचारे डर जाते थे, कोई भी खरीद नहीं करता था। तो एक बार जब इसको लगा कि ये मेरा मकान बिकेगा नहीं, मेरे ये चाचे सब एंटी बैठे है, तो उसको शक आ गया चंद्रमणि को, और वो गिर गई। गिर गई तो उनके सब रिश्तेदार इधर उधर से सब भागे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो डॉक्टर ने कहा इसको कोई गहरी चिंता है, चोट लगी है। भाई तुमको कौन सी चोट लगी है? कहती है बाबा वहाँ चला गया, मेरी सब सखियां वहां चली गई, तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी, मैं मकान के काम में फंसी हुई हूँ, आप मेरा मकान बेचने में मदद नहीं करते हो, ऐसे अपने चाचे के भाइयों को कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ही ले लेंगे, हम तुम्हारी ये चिंता दूर करेंगे, हम ही ले लेंगे। तो उन्होंने मकान का ले लिया, लिखा पढ़ी करके मकान हुआ, बाकी रहा एक फादर। तो फादर से बात की तो हम तो जा रहे हैं, सब जाके वहीं रहेंगे। तो पिताजी आप क्या कहे, वो बेचारा शराब बहुत पीता था, सिगरेट बहुत पीता था, एकदम क्या उसका बंगला लगा पड़ा था, ऐश अशरती। तो कैसे, बाबा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी आत्मा इस तरह से झाटकू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम तो बच्चियां हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा फादर क्या करेगा, फादर को तीर लगाओ। फिर चंद्रमय दादी ने जाके सेवा की, जब सेवा की ना तो उसका मन पिघल गया, बोला जहाँ तो मेरी सातों बच्चियां चली जाएंगी, मेरी वाइफ भी वहां चली जाएंगी, तो बाकी मैं यहाँ रह के क्या करूंगा, नहीं पिताश्री को लिख करके भेजो, तो हमारा पिता भी सरेंडर होना चाहता है। तो बाबा को बड़े फलक से लिखा, बाबा मेरा पिताजी प्यार है, इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा दुकान मकान लगा पड़ा है, उसको बेच करके कहां सरेंडर होगा। परंतु झाटकू हो गया, सबसे नंबर वन वो झाटकू हुआ है। और दूसरा रतन रिजुमल दादा, वो शांतामणि का फादर, वो शांतामणि का फादर तो ऐसे घूमने फिरने गया था कश्मीर की तरफ, तो वहां निर्मल शांता दादी, बाबा अंदर था, बाबा कश्मीर में गया हुआ था। निर्मल शांता तो बाबा की बच्ची थी, तो बच्ची के नाते से बाबा के साथ गई थी, ज्ञान की चटक तो उसको भी लग चुकी थी बाबा के द्वारा। तो बाहर खड़ी थी पहाड़ी पर, और रिजुमल दादा ऐसे चक्कर लगाने जा रहा था, जैसे घूमने फिरने जाते हैं ना पहलगाम की तरफ, तो वो निकला तो उस बच्ची को ऐसे खड़ा हुआ देखा। निर्मल सर तो छोटी छोटी लगती थी, तो थोड़ा आगे बढ़ करके कहा बच्ची पहलगाम जाने का रास्ता कौन सा है, आप बताएंगी? तो उसने कहा वो रास्ता तो मुझे पता नहीं, पहलगाम में कैसे, मैं परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। एकदम से फर्क से कहा मैं परमधाम का रास्ता बता। तो सुन करके चला गया, बोला परमधाम पता नहीं कौन सा रास्ता नहीं है, जिसके लिए कहा तो मैं बता सकती हूँ। पर शब्द बोलने में ना जहर भरा हुआ था, उसने नशे से बोला, रियलिटी से बोला। तो वो जा करके फिर आगे आ गया, कहता है बच्ची तुमने कहा था ना मैं परम धाम का रास्ता बता सकती हूँ, तो वो परम धाम कहाँ है? तो कहा आप अंदर आ। तो उनको पहाड़ी पर खरीदी ने उनको पहाड़ी पर बुला दिया। फिर आकर के बाबा को, बाबा एक अच्छा जिज्ञासु ले आई हूँ तो बाबा ने कहा कहाँ से बच्ची ले आई? कहा बाबा वो कहता है तो मुझे परम धाम का रास्ता बताओ, तो मैं अभी आपके पास भेजती हूँ, आप परम धाम का रास्ता बताओ। अब वो बेचारी नहीं, छोटी इतनी तो पावर थी नहीं, पर निश्चय था कि परम धाम है हमारा धाम। खैर बाबा के पास ले गई और जैसे बाबा ने उसको देखा तो बाबा के मुख से जो रियल बात थी ना वो निकल आई, बच्चा मैं तो तुमको 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे? तो उसको लगा बरोबर मैं 3 दिन से ही आया हुआ हूँ और 3 दिन से बाबा मुझे ढूंढ रहा है। तो उसको अंदर से फील हुआ सच्चाई का, ये ऐसा कौन है जो मुझे 3 दिन से ढूंढ रहा था। तो जैसे बाबा को प्यार की दृष्टि दी रहे बाबा ने उसको दी, बस वो तो ऐसा ध्यान में गया, ऐसा जबरदस्त ध्यान में गया, उनके हंसी का रिकॉर्ड भरा हुआ है पूरा टेप समझो, वो हंसता ही रहता है बंद ही न करे। फिर बाबा उसको उठाने लगा, बच्चा आओ बच्चा, देखो तुम्हें कौन बुला रहा है, आओ बच्चा, आ जाओ बच्चा, आ जाओ बच्चा, ऐसे करके बाबा ने उसको नशे से उतारा। 2 शब्द बोला फिर बाबा ने धीरे धीरे करके ना उसको लॉकर के लाइन में ले आए। बच्चे तुम्हें यहाँ क्या करते हो, कहाँ से आए हो? कहा हैदराबाद संध से। तब इसी बीच में ये इधर पहुंचा है और इनका परिवार ओ मंडली में पहुंचा है। ओ मंडली में मम्मा के रिश्तेदार है ये शांतामणि दादी। शांतामणि को तो आप सभी जानते हैं ना, शांतामणि दादी मासी की लड़की है। तो ऐसी 2-3 मासी की लड़कियां थी और मासी भी थी, ध्यानी मासी थी जो यहाँ सरीस हो गई है, आप तो पीछे आए हो। तो ध्यानी एक मासी थी, एक दूसरी मासी थी जिसने बम्बई में सरी छोड़ा, तो वो जो थी वो हमारे पास हैदराबाद में आ चुकी थी सत्संग में, और ये उधर आया कच्छ में। तो उसको तीर लगा वहाँ बाबा से और उनको तीर लगा मामा से, क्योंकि मम्मा भी जाती थी तो वो भी जाने लगी, वो भी उनको भी साक्षात्कार हुआ, शांतामणि को भी साक्षात्कार हुआ, उनकी काब मासी को भी साक्षात्कार, बहुतों को साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार की धूम मची हुई थी। तो जब वो वहां से लौटी तो लौटा तो बाबा ने उसको कहा, बच्ची बाबा तो अब जाने वाला है हैदराबाद में, तो आपका परिवार हैदराबाद में है, तो बच्चे तुम अपने परिवार से सत्संग में आ सकते हो, जाकर के अपने परिवार को लेके आना। तो जब हैदराबाद में देखा ये तो मेरे से पहले ही परिवार वाले यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिर बाबा को कहा, बाबा बस मेरे को अब दुनिया में कुछ नहीं करना है, मुझे बाप मिला, मुझे सब कुछ मिला, अब मैं ये धंधा दौरी सब छोड़ दूंगा और मैं बाबा के ज्ञान में लग जाऊंगा, मैं सरेंडर होना चाहता हूँ। मैं सरेंडर की धूम मच गई थी। फिर बाबा ने कहा अच्छा। फिर उसकी प्रॉपर्टी सारी थी कराची में और हम थे हैदराबाद में। फिर कराची में जब बाबा गए तो इसका बंगला बाबा के लिए रहता था, इनका रिजमल का छोटा सा बंगला पर बाग बगीचा बहुत अच्छा। तो बाबा जब रहता था यहाँ रहता था और हम शहर में बहुत बड़ा मकान लेकर के हम उसमें रहते थे। तो इस तरह से परिवार के परिवार को टचिंग बहुत, परिवार के परिवार सुहा ऐसे जैसे पतंग होते है ना ज्योति में जलने के लिए आ जाती है, ऐसे शुरू में जो भाई बहने सबको जबरदस्त टचिंग, या साक्षात्कार या फीलिंग से या दूसरे दूसरे शहर से वंडर लगता, दूसरे दूसरे शहर से बाबा का फोटो देख करके भक्ति में कृष्ण के साथ देख करके उनको जैसे वहां से एड्रेस मिली है कि तुम बच्ची मेरी बहुत वो कर रही हो और मैं गुप्त विषय में आ चुका हूँ। फिर वो ढूंढती है तो ड्रेस देखती है, गेरु कफनी वाला तो कोई है नहीं, साधु सन्यासी तो न बाबा की होंगी, तो सफेद ड्रेस हम लोगों की देख करके वो जब अंदर घुसती है तो देखती है ये वही है जिसको मैंने स्वप्न में देखा। फिर वो बोलती है कि भाई मैंने इनको स्वप्न में देखा था, मैंने इनको स्वप्न में देखा था। फिर हम बहनों को बताती, मैं शिकारपुर से आई हूँ, मैं दूसरे शहर से, मैं थी भाई इनको घर बैठे ये सब कैसे साक्षात्कार हो। परेश में थी और थी भी थोड़ी जसोदा के रिश्ते में, जो बाबा की धर्म पत्नी उसके रिश्ते में थी, उसकी कजिन सिस्टर थी या क्या कुछ ऐसा था। तो दस मम्मा भी आ गई, मम्मा के साथ मम्मा की दूसरी बहन भी आ गई, फिर ये एक सुंदरी बहन थी बहुत अच्छी, जैसे मम्मा की पर्सनैलिटी है वो आ गए। पीछे तो बताऊं कन्याओं का झुंड का झुंड, तो हैदराबाद में हलचल मच गई, हलचल तो मची। और एक साल तक बहुत बड़ा प्रभाव, हमारे मामे चाचे नाने सब आने लगे। फिर जब पवित्रता की गहरी धारणा देखी तो पतियों ने आवाज किया कि ये क्या, ये जब से वो मंदिर में गई है मेरे से बातें नहीं करती है। उसने कहा मेरे से बातें नहीं करती, मेरी बात नहीं सुनती है, तो ये कौन सा सत्संग है दादा का। पीछे तो बुखार चल गया उनको, बुखार भी बुखार चल गया, उतरने वाला नहीं था बुखार, खत्म ही हो गए बेचारे। फिर बाबा को एक बारी कलेक्टर के कोठी में पर्सनल किस्से पर बुलाया, तो उसका पति दादी कुमार का, उसकी बहन का पति, और बहन बहन नहीं थी पर बहन का पति, ससुर और रिश्तेदार उस लड़के की तरफ से, और इधर बाबा जसोता और ब्रजेंद्रा और दादी सब कलेक्टर के कोठी में गए। तो कलेक्टर ने प्यार से बाबा से बात की, तो दादा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, और जब से आपने यह ज्ञान दिया है तो हैदराबाद में बहुत सिंधियों की बहुत अच्छी उन्नति हुई है, आत्म ज्ञान उनमें आ गए हैं। पर दादा एक बात मैं कहूँ, आप सिर्फ पवित्रता की बात को ढीला कर दो। तो बाबा ने कहा पवित्रता की बात को ढीला करना ये तो मेरा तो काम ही नहीं है, ये तो मैंने ज्ञान दिया नहीं, मैं तो खुद गृहस्थी बाल बच्चे था, आपको पता है मेरी प्रवृत्ति, मेरी स्त्री, मेरे बाल बच्चे, ये ज्ञान मैंने नहीं दिया है, ये तो देने वाला भगवान है। भगवान ने ज्ञान दिया है तो मैंने भी धारणा किया, मेरे बहू ने, मेरी स्त्री ने, मेरे बच्चों ने, सबने ये पवित्रता की धारणा की है। अब सत्य तो आने वाला है, और भगवान कहते हैं इसके लिए तुम्हें पवित्र रहना है, तो भगवान की आज्ञा मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं तुम पति की बात मानो पर भगवान की न मानो, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बस इसके ऊपर इसके जो बाप दादी की बहन का पति था ना, बहुत बिगड़ा, बहुत गालियां देता ही था। तो पहले तो दादी सहन करती रही, दादी तो सहन नहीं कर सकती, सिर्फ मेरा बहन का पति और ऐसे बैठ के गाली दे गई मेरे सामने। फिर उसको जोश आ गया, कहा खबरदार तुमको पता लगता है तुमने किसको बुलाया है, कलेक्टर साहब आपने कैसे बुलाया बाबा को, गाली खाने के लिए बुलाया था, आप इसकी जुबान बंद करो, इनको हटाओ, नहीं तो हम जाते हम बात नहीं करेंगे। तो मां का मित्र दादी को ताकत आ गई उसी दिन। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये थोड़ा गुस्से में है ना, थोड़ा निकाल रहा है, अभी संधा हो जाएगा, अभी संधा। कहा नहीं तो बोलते ही रहते, गालियां देते ही रहते, गालियां दे, अपनी स्त्री को वश में रखो ना, तुम्हें यहाँ आकर के बाबा को, बाबा ने कोई पकड़ के रखा है या तुम्हारे घर से लेके गया है, जब बाबा कुछ ऐसा कदम करे तब तुम बोलो, बाकी बाबा की शिक्षा तो हम सभी धारण करते हैं, कौन नहीं धारण करते, जो जाता है वो धारण करता है, कोई करे कोई न करे, इसके लिए बाबा तो जबरदस्ती नहीं करता। ये किस्सा हुआ, उसके बाद उनको पता लग गया ये बात मानने वाला दादा नहीं है। फिर तो शहर में हंगामा, जहाँ से गुजरते थे ब्रह्मा कुमारी ओ मंडली ऐसी अंगुलियां उठाते थे, और हम भी कोशिश करते थे सुबह सवेरे निकल जाए, मतलब हमारी शिकल वो न देखे, हम उन बंदरों की शिकल न देखे। तो सत्संग का रूप जो होता था ना, थोड़ा तो सवेर होता है ना, पर हम सवेर अंधेरे अंधेरे में निकल जाते थे, कभी कभी पता ही नहीं लगता था टाइम का, तो कोई 2 बजे भी निकल जाते थे, कोई 3 बजे भी घर से निकल जाते थे। पुलिस वाले पकड़े, ओ माई तो कहाँ जा रही हो, अरे भाई मैं सत्संग में जा रही, कौन सा तुम्हारा सत्संग है, तुझे पता नहीं है यहाँ सत्संग होता है रोज, मैं तो रोज जाती हूँ, आज तुमने कैसे देखा, मैं तो रोज जाती हूँ। ओ पुलिस वाले को भी ऐसा करके निकल जाती थी, तो वो कहते अभी 2 बजे है, 2 बजे तुम्हारा कौन सा सत्संग होता है, पर वो बोलती ऐसी थी जो वो बोल नहीं सकते थे। तो उस समय एक निराला नशा चला हुआ था। एक साल हम हैदराबाद सिंध में रहे, चमत्कार बहुत देखे, बाबा की चमत्कार, नई नई बातें, नित्य नई बातें, आज वहाँ से नई बात आई, आज यहाँ से ऐसे करते करते आखिर में बाबा हम बच्चों को कराची मिले गए। मैं बंगली तो थी पर मेरी तो अलग हिस्ट्री हो जाएगी ना फिर। तो अभी जितनी बातें मुझे याद आ सकी टाइम अनुसार उतनी सुनाए, फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है। अगर साक्षात्कार
वो भी जल्दी होने वाला है। बाबा ने कहा ये तैयार हो जाए, डोरी बाबा के हाथ में है। अच्छा भाई, आज सबसे बड़ी खुशी की बात सुनाती हूँ। भाग बहन कितने सालों के बाद यहाँ आई है?